تفسير دیکھتے ہیں آج کے لیسن کی. واذکر اللہ فی ایام معدودات, اللہ کو یاد کرو معدودات دنوں میں. معدودات دن کون سے ہیں؟ ایام تشریق, جن کو کہتے ہیں ہم 11, 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں, ان میں روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو لوگ یہاں پہ, سوائے اس کے وہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ وہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ 3 روزے یہاں پہ رکھے, وہ رکھ سکتا ہے. تو ہم نے پچھلی آیت نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس میں ہم نے یہ بات کی تھی, آیت نمبر 196 میں, تلک عشرۃ کاملہ تھی نا بات, فمن لم یجد, وہ والے 3 روزے کوئی رکھ سکتا ہے وہاں پہ ان دنوں میں, لیکن اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں روزہ رکھنا چاہیے. کہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں, اللہ کی یاد کے دن ہیں. جو لوگ حج پہ نہیں بھی گئے وہ بھی اللہ کو یاد کریں ان دنوں میں, تکبیرات بہت بیان کریں, بلند کریں ان دنوں میں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى, جو کوئی جلدی کرے 2 دن میں اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں, اور جو تاخیر کرے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں, لیکن تقوی کے ساتھ. یہ کیوں کہا گیا کوئی گناہ نہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں آپ کو پتا جو 11, 12 اور 13 کے دن ہوتے ہیں یہ مینا میں رہنے کے دن ہوتے ہیں, مینا میں آپ ٹینٹس میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں. تو اس زمانے میں جو لوگ, کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ بس 2 دن رہنا یہ بس اس میں فضیلت ہے, اس کے بعد نہیں رہنا چاہیے, اس کے بعد آ جانا چاہیے, تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ 3 دن رہا جائے. کچھ لوگ جو 3 دن رہتے تھے یعنی 13 تاریخ تک رہتے تھے, وہ ان کو برا سمجھتے تھے جو 12 کو چلے جاتے تھے اور 2 دن صرف رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ تم اس کو برا کہہ رہے ہو وہ اس کو برا کہہ رہے. آج بھی اگر کوئی 12 کو چلا جائے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو اس لیے کہ اس کا کیا, آج کے لیے یار دیکھو ذرا پہلے ہی جا رہا ہے اور ہم کتنے اچھے ہیں, دیکھو ہم 13 کو بھی رہ رہے ہیں. نہیں, لیمن اتقا, تقوی ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ 3 دن بھی رہے. اصل بات تو تقوی کی ہے. اور اگر وہاں رہ کے بھی 3 دن رہنا ہے اور اس میں گپ شپ ہی کرتے رہنا ہے, یا اس سے جھگڑ رہے ہیں, اس سے بحثے کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ کیوں آپ نے لڑائی لی بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر 2 دن کے بعد ہی چلے جائیں. یعنی تقوی کے ساتھ رہیں تو 3 دن رہیں, اور افضل ظاہر ہے علماء کہتے ہیں کہ 3 دن ہی رہنا. اب حج کے اوپر گئے ہیں, اگر آپ حج کی چیزوں میں نہیں انٹرسٹڈ زیادہ, ادھر ادھر کہ واپس جا کے ہم شاپنگ کریں, واپس جا کے ہوٹل میں ہم جا کے آرام کریں, تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن اگر 3 دن رہیں تو وہ اچھی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, اس میں بھی کہا گیا جو تقوی کے ساتھ رہے اس کے لیے پھر وہ 3 دن رہے. یعنی تقوی, اب دیکھیں نا ان دنوں میں یا حج میں سارے ہی نہیں, آپ دیکھتے ہیں زیادہ فوکس کس پہ ہوتا ہے, جاتے وقت بھی, وہاں پر بھی, سارا وقت اچھا یہ کیا کرنا ہے, اس کے بعد کہاں جانا ہے, اچھا جمرات کب کرنے ہیں, اچھا قربانی کب ہو گئی کہ نہیں ہوئی, اچھا پھر بال سر منوانا ہے مردوں نے یا بال کاٹنے ہیں, یا وہ بس سارا وقت ان ریچولس پہ بہت زیادہ توجہ ہوتی, لیکن تقوی تو اس کے اوپر نہیں ہوتے. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. یعنی اب یہ بھی آپ دیکھیں آخری دنوں کی جب بات آئی کہ حج سے آپ واپس جانے لگے ہو, واتقوا اللہ, اللہ کا ڈر, یعنی تھرو آؤٹ جب آپ سامان باندھ رہے تھے تب بھی کہا گیا تقوی کا سامان ساتھ لے کے جانا, جب آپ وہاں پہ بھی ہیں تب بھی کہا گیا لیمن اتقا, جو تقوی اختیار کرے, جب آپ واپس آ رہے ہیں تب بھی کہا گیا واتقوا اللہ. کیا چیز ہے تقوی؟ بہت دفعہ بتایا آپ کو, کوئی ایسی کوئی سمپل سی بات بتائی جائے جس سے سمجھ آ جائے تقوی کیا ہوتا. اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بتاتی ہوں. دیکھیں اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اعلان وہ کر دیتی ہے کہ ایک مجرم ہے بہت خطرناک ہے, وہ لوز ہے, تو آپ لوگ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیں. اب اگر کوئی بیٹھا رہے گھر میں, اچھا اس نے اعلان سن لیا, ہائے بڑا ڈر لگ رہا ہے, ہائے کوئی باہر آ گیا, واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہے, اس کو فون کر رہا ہے, اس کو تمہیں پتا ہے آج ایسا ہو گیا, اچھا کر کر کے اور بیٹھا رہے, یہ تقویٰ نہیں ہے. دوسرا بندہ کیا کرتا ہے, جو ہی اس کو اعلان سنتا ہے وہ اٹھتا ہے, بھاگتا ہے, جلدی اپنے گھر کے دروازے بند کرتا ہے, اپنی کھڑکیاں بند کرتا ہے, اپنا पर्दे ही गिराता है, वो कहता है कि कहीं वो आ ना जाए, यानी खतरे को जूं ही उसने महसूस किया ना, उसने एक्शन किया। फिर उसके बाद फिर उसने मैसेज भी कर दिए या कुछ है, या वो डर भी रहा है, लेकिन उसने इंतजाम किया बचाव का, ये है तकवा। यानी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, ऐलान कर दिया है, हमें समझ आ गई है कि आखरत में एक आग है, वहां पे अजाब है, उससे बचने के लिए जो एक्शन आप करते हैं ना, वो तकवा है। तकवा ये नहीं है जैसे डर जाओ, हमने इसका तर्जुमा लिख लिया डरो अल्लाह से, तो अब डरो अल्लाह से मतलब ये है कि हम व्हाट्सएप पे कहते रहे वत्तकुल्ला, या डरने का बहुत बताएं, या जो हमसे मिले हम कहें हाय बड़ा डर लगता है। तो ये तो उसकी तरह ही है जो मैंने आपको पहली मिसाल दी कि जो बैठा रहा और वो इधर उधर मैसेज करता रहा और उठ के उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिसके दिल में खौफ हो वो तो उठ के भागेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, ऐलान सुनते ही जिसको यकीन है कि वाकई ऐसा बंदा लूज है, तो वो अपने बचाव का इंतजाम करेगा। तो जिसको इतनी बड़ी आग का पता चल जाए वो बैठा रहेगा क्या, वो क्या करेगा, भागेगा कि मैं किस तरह अपने आप को बचाऊं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, यानी अपने बचाव का इंतजाम करो। डर का मतलब ये नहीं है यहाँ पे बैठे हुए कांपते रहो और कहो कि बस हमें बड़ा डर लग रहा है। आलम हूँ, और जान लो अन्नकुम इलैही तुहशरून, कि तुम उसकी तरफ इकट्ठे किए जाओगे। ये बात यहाँ पे क्यों आ गई, इसलिए कि हज में जब आप जाते हैं ना, तो एक बात बहुत याद आती है, आराफात का मैदान ये कहा जाता है कि यही हशर की जमीन बनेगी। तो जब इंसान वहां जाता है और लोगों को ऐसे देखता है जमा हुए में, तो उसको पता है कि आज तो मैं वॉलंटरीली आया हूँ, खुद अपनी मर्जी से आया हूँ, ठीक है, अपनी खुशी से आया हूँ। लेकिन वहां पर ये बात को ना भूलना कि एक दिन ऐसा भी होगा कि तुम इसी जमीन पे आओगे और खुद नहीं आओगे, तो शरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। तो जमा उन क्यों नहीं आया, तुम जमा किए जाओगे, वो भी तो जमा होना होता है, इकट्ठा होना होता है। असल में हशर क्या है, तुम्हें पता है हशर क्या होता है, ये जो जानवरों को हांकता है ना चरवाहा, हांक के एक जगह जमा करता है, एक आवाज लगाता है, तो वो जानवर तो इधर उधर जा रहे होते हैं, वो एक आवाज लगाता है तो वो उनको हांकता हुआ एक जगह ले आता है। इस तरह लोग कोई आना चाहे ना चाहे, जब एक आवाज उस दिन लगेगी ना, सब हांक के एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएंगे और वो बेजोर होंगे। ठीक है, तो कितना जबरदस्त लफ्ज भी है इसके लिए, जो वाकई उस पिक्चर को डिपिक्ट करता है कि जैसे एक आवाज के ऊपर जानवर जमा हो जाते हैं, और इसी तरह उस दिन एक सुर की आवाज होगी और तुम यहीं पे इकट्ठे होगे, और उस दिन तुम अपनी मर्जी से नहीं होगे, हाँ तुम्हें लाया जाएगा, तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। आज तो मर्जी से आए होगे, आए हो ना, याद रखना एक दिन दोबारा आओगे। तो ये बात वहां पे याद भी नहीं रहती, जब गप्पों में लगे होते हैं, इधर उधर की बातें हो रही थी, तो कहाँ याद रहता है यहाँ पे दोबारा आके खड़े होंगे। इसी तरह मखलूक होगी, इसी तरह सब होंगे, और कैसे वो उस वक्त नंगे बदन बेखतना, नंगे पैर किस तरह से यहाँ पे जमा होंगे, और सूरज कितना करीब होगा। ये बातें हैं जो वहां पे याद रखने वाली, ये वो लेसन है जो वहां से लर्न करने के लिए, कैसे सब लोग एक ही चीज के पीछे लगे होते हैं कि हम किस तरह जो जितने मरासिम है सही से पूरे कर ले। हर एक को ये फिक्र लगी होती है, किसी को ये नहीं याद आ रहा था बच्चे क्या कर रहे होंगे पीछे, खाना क्या बनाया होगा, आज खाना क्या है मैंने, आज मेन्यू क्या होगा, कुछ भी नहीं परवाह होती, बल्कि इवन यहाँ तक डेट तक भी नहीं याद होती। जब वहां पे गए थे हम लोग हज पे, तो उस वक्त नया साल शुरू हो रहा था, यानी हज के दिन ईद थे मीना में, मैं यही सोच रही थी कि देखो अगर हम घर पे होते तो कितना शोर होना था, न्यू ईयर है और ये, अब तो यहाँ पे पता भी नहीं है, हर बस बंदा एक ही चीज में लगा था, पूरी दुनिया भूल गई है हमें। तो ऐसा ही जब वापस आए तो इस तरह ही होना चाहिए कि अल्लाह की रजा के लिए इंसान की भाग दौड़। हुआ मिनन नासी मई अजीब का कौलू फिल हयात दुनिया, देखो अब एक दो लोगों का जिक्र आया, एक बंदा वो है जो मुनाफिक है, और उसका जिक्र जो ये दो तीन आयतें अगली आ रही हैं आयत 2-6 तक, इसका जिक्र है, और फिर एक मोमिन का जिक्र है। तो कोई लोगों में से कोई ऐसे भी हैं, मैं यौजुब का कौल हूँ फिर हयात दुनिया, जिसकी बातें आपको बड़ी पसंद आएंगी दुनिया की जिंदगी की, यानी वो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें, इतनी खूबसूरत बातें करेगा कि आपको लगेगा कि ये कितना अच्छा, कितना मुखलिस, कितना जबरदस्त आदमी है। तो कुछ कोई ऐसा भी होगा लोगों में से, यानी बातें ही बातें हैं। और उसके बाद क्या है, वयुशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बी, और वो बातें इतनी जबरदस्त करता है, कहता है मैं तो इस्लाम कबूल करता हूँ और मैं तो अपनी बात में सच्चा हूँ और ये हूँ और वो हूँ, और इसके ऊपर कसमें भी खाता है, अल्लाह की कसमें खाता है कि जो मेरे दिल के अंदर है इतना ईमान है, मैं आपका इतना खैर ख्वाह हूँ, वह हुआ अलद्दुल खिसाम, हालांकि वो झूठा है, सख्त झगड़ालू है, झगड़ा करने वालों में सख्त झगड़ा करने वाला है, जबरदस्त झगड़ा करता है। यानी वो बातें अच्छी अच्छी क्यों करता है, खूबसूरत बातें क्यों करता है, अपने फायदे के लिए, फायदे हासिल करने के लिए। और अल्लाह की कसमें भी क्यों खाता है, इसलिए ताकि दूसरा यकीन कर ले, वो मेरे पर ट्रस्ट करे कि मैं सच्चा हूं। ज्यादा कसमें खाने की उसी को जरूरत पड़ती है जो कि अपनी सच्चाई को दूसरों के अंदर करना चाहता है, जिसपे कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो वो कहता है मैं कसमें खाऊंगा ना तो मैं, मुझे लोग वाकई मेरे ऊपर बिलीव करेंगे। लेकिन उसका हाल क्या है, वैसे बड़ी अखलाक वाली बातें, वैसे बड़ी, लेकिन जिस वक्त उसके कोई खिलाफ बात हो जाए, कोई उसके मफाद के, इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात हो जाए, फिर आप देखो कि वो पहचाना ही नहीं जाएगा ये वही बंदा है, इतना सख्त झगड़ालू। तो देखें अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि जो ऊपर ऊपर से भी बातें करते हैं ना, और उनके दिल का हाल अल्लाह को बहुत अच्छी तरह पता है। लोगों को धोखा देते हैं कसमें खा खा के कि हम तो बड़े सच्चे हैं, हम तो ऐसे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है वो अल्लाह ताला जानता है। अब ये एक ऐसे इंसान की मिसाल है जो बकरी की खाल में भेड़िया है, दिल में कुछ ऊपर से कुछ, कसमें भी खा रहा है इसलिए क्योंकि जुबान से कसमें खा के बता दूं, लेकिन दिल उसका साथ नहीं देता, मफाद परस्त, डबल खेलने वाला, दो जिसके दो जुबानें हैं, दो मुंह वाला जिसको कहते हैं, इस तरफ कुछ उस तरफ कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, अपने मकसद पूरी करने के लिए मीठी बातें करना, और बाद में पता चलता है कि जो है ना असल इनकी क्या है, ये झगड़े का कोई बात ऐसी हो जाए ना जो उसके खिलाफ हो, फिर देखो कितना झगड़ा करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो सबसे ज्यादा झगड़ालू है, बुखारी की यह हदीस है। यानी अल्लाह ताला को इतना बुरा लगता है वो शख्स। इसी तरह एक और हदीस में आता है तिर्मिजी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे गुनाहगार होने के यही काफी है, तुम हमेशा झगड़ते रहते हो। झगड़ा करना अल्लाह को सख्त नापसंद है। जो लोग अपने घरों में हर वक्त झगड़े करते रहते हैं और झगड़े में बड़े माहिर हैं, बड़े तेज हैं। देखें इमाम बेहती ने इब्ने आमर से रिवायत किया है कि जब दो शख्स झगड़ा करते हैं ना तो ज्यादा बुरा होता है जो गालिब आ जाता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा अच्छा वो है जो गालिब आ गया, यानी ये तो झगड़े में जीत गया, इसने दूसरे को चुप करा दिया। कभी हम कहते हैं मैंने तो ऐसा उसको चुप कराया ना, मैंने वो सुना ही उसको, फिर तो बड़े आपका कमाल नहीं हो गया, बड़ी अच्छी बात नहीं, कोई खूबी की बात नहीं है, वो ज्यादा बुरा है जो झगड़ा करते हुए गालिब आ जाता है। इसी तरह अबू दरदा से रिवायत है कि तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफी है कि तुम हमेशा लड़ते रहते हो, और इधर जाए उनसे लड़े हुए हैं, कभी खानदान वालों से लड़ाइयां की हुई हैं, कभी घर वालों में लड़ रहे हैं, कोई कहता है माफी करो भाई इसको तो छेड़ो भी नहीं, इसको छेड़ दिया तो ये लड़ना शुरू हो जाएगा। अगर लोग इस तरह आपके बारे में सोचते हैं ना, वो बहुत तशवीश की बात है, बहुत फिक्र की बात है कि लोग उसको जैसे वो है ना कि यानी वो आग है तो ऊपर आपने तेल डाल दिया, अगर जरा सा भी इसको इग्नाइट किया तो ये तो भड़क उठेगा, तो लोग डरते हैं उससे, इसको बड़ी अपनी खूबी ना समझे, बड़ा कमाल ना समझे कि मैं बड़ी, देखो सारे मुझसे जरा बात तो करके देखे तो के पर मेरा रोब है ऐसा, वो रोब नहीं है, वो डरते हैं कि भाई इसकी जुबान ना ही खुलवाओ, तो ये कोई बहुत कारनामे की बात नहीं। बहुत ज्यादा इस चीज पे सोचना चाहिए कि फिर मेरा अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है। ठीक है, लोगों को तो आज डरा धमका के रखा हुआ है ना, ऐसा लड़ूंगी ना, ऐसा इनको सिखाऊंगी ना सबक, फिर देखेंगे। तो ये वो तो ठीक है, डर गए आज आपसे, वो तो नहीं बोल रहे, वो तो ठीक है, उन्होंने अपनी इज्जत इसमें ही समझी कि खामोश हो जाए। लेकिन फिर सोचें कि अल्लाह आपके बारे में क्या सोचता, कि जब ये बता दिया गया ना कि सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा शख्स है वो जो झगड़ता है, तो फिर मेरी और आपकी क्या कदर कीमत होगी अल्लाह के, अगर हम भी झगड़ा करने से नहीं बाज आते, बल्कि लोग हमें आगे करते हैं कि ये जरा ज्यादा झगड़ा करने में तेज है, कहीं पे भी ले जाना हो कोई बात करने के लिए तो हमें आगे कर देते, ये रेपुटेशन है ना। तो फिर अरे ऐसे लोग हर जगह पे होते भी हैं और मशहूर भी होते हैं, लोगों को पता होता है, लोग डरते हैं उनसे। तो ये अलदुल खिसाम होता है, वैसे कोई और जगह पे देख लो तो मीठी बातें करने से भी नहीं, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगी, अगर भाई उनको गुस्सा आ जाए तो अल्लाह की पनाह है। फिर नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बहस और झगड़ा छोड़ दिया हालांकि वो हक पे है, तो उसके लिए जन्नत के अतराफ में घर बनाया जाएगा। इतनी बड़ी बात है, यानी झगड़े, बदकलामी, यानी ये अलदुल खिसाम होता है, बदतमीजी, गालम गलोच पे और बहस मुबाहसे में पड़ना, और ये सब झगड़े की किस्में हैं। इंसान इतना बदतमीजी पे उतर आए कि किसी का लिहाज नहीं है, फिर ये झगड़ा ही है। झगड़ा का मतलब ये नहीं है कि आप वो बच्चों की तरह का झगड़ा समझ रहे हो कि जिसने एक दूसरे की बाजू मरोड़ दी, किसी ने किसी को घूंसा मार दिया, ये नहीं है झगड़ा, ये जुबान वाला झगड़ा है। और कितने घरों में इन झगड़ों की वजह से तलाकें होती हैं, ये कई औरतें हैं जो झगड़ा करना नहीं छोड़ती और झगड़ने में बहुत तेज होती है। तो अगर ऐसी आदत है ना, तो अल्लाह ताला से दुआ करें बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्लाह के हाँ फिर अगर नापसंदीदा हो गए तो क्या अंजाम होगा, और जुबान को ज्यादा फिर बंद रखे। तो लोगों में से कोई, वो भी आपको पता है, ये भी मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है, कि मुनाफिक जो है ना, जब झगड़ा कर किया जाए ना तो गालियां देने शुरू हो जाता है, यानी वो आपे से बाहर हो जाता है ना, यानी अलदुल खिसाम हुआ जो, यानी जब झगड़ा हो, देखिए किसी के साथ वैसे छोटी मोटी झगड़े की बात कभी हो सकती है, लेकिन झगड़े के अंदर इतने माहिर होना कि और इतना ज्यादा आपे से बाहर हो जाना कि ना पता है कि दूसरी तरफ कौन है, ना कोई अपनी इज्जत का ख्याल, ना दूसरे की इज्जत का ख्याल, ये लद्दुल खिसाम है। तो जो लोग भी इस तरह से हैं, उनको खुद रियलाइज करना चाहिए, उनको खुद पता होना चाहिए। बार दफा वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, दुनिया जहान को पता होता है, उनको नहीं पता, नहीं खुद पता होना चाहिए, हम हमें कैसा समझा जाता है। तो लोगों में से कोई ऐसे भी लोग हैं, और फिर वह इजा तवल्ला सा फिल अर्दी ले युफ सीधा फीहा वह युह लिखल हा तवन्ना, और जब वो पलटता है आपसे वापस जा रहा होता है, तो जमीन में कोशिश करता है फसाद की, खेतियों को उजाड़ता है, उनको हलाक करता है, और नस्ल को, असल में उस जमाने की उससे देखा जाए तो अखनस बिन शुराइक जो था, वो मदीना में नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और बड़ा अपने इस्लाम का इजहार किया, बड़ी खूबसूरत बातें की, मैं तो इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं तो बड़ा सच्चा हूँ, मैं तो ये हूँ। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठा तो मुसलमानों के खेतों को खराब किया, आग लगाई और गधों की कोंचे काट दी, तो उसके मुतल्लिक ये आयात नाजिल हुई। लेकिन ये आयात सिर्फ उससे स्पेसिफिक नहीं है, आम भी कोई भी इंसान जो ऐसा करे, पहले वोट लेने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें, इतनी कसमें, मेरे से ज्यादा तो आपका कोई खैर ख्वाह ही नहीं है। लो वो इतने बेचारे खैर ख्वाह होते हैं, अल्लाह तआला माफ करे, पॉलिटिशियंस बेचारे इतने खैर ख्वाह होते हैं, बेचारों को तो रात को नींद ही नहीं आती लोगों की खैर ख्वाही में, तड़प रहे होते हैं गरीबों की गुर्बत की वजह से, और ऐशो आराम के खुद हाल ये हैं कि कभी अपने महलों से उतर के भी नहीं देखते कि वहां पे गरीबों की बस्तियों का हाल क्या है। तो वो बहुत फिट, उनके लिए भी आती है। मैं जब बहस करने लगते हैं फिर उनको देखा करें कैसे होते हैं, आपे से बाहर को पता ही नहीं बोल क्या रहे हैं। हाँ उनके लीडर के ऊपर कुछ बात करके देखें, फिर देखेंगे कैसा करते हैं, है ना। और वैसे ही क्या होते हैं, जमीन में फसाद कर, मतलब वोट मिल जाए फिर उसके बाद देखें, जमीन में फसाद, खेतियों का कोई हाल नहीं, नस्ल की तबाही, यानी जानवरों की नस्ल को तबाह कर रहे हैं। जमीन का फसाद तो आप देखिए, आज ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये जमीन का फसाद है, ये इंसान की अपने हाथों की कमाई है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और कुछ अरसे के अंदर कोई साफ पानी ही नहीं मिलेगा, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये फसाद है इंसान का अपना मचाया हुआ फसाद। वो सब चीजें हैं जिससे कि डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो निजाम अल्लाह ने बनाया ना उसको इंसान डिस्ट्रॉय कर रहा है। पोल्यूशन जो है, इतना बड़ा फसाद है। फिर उसके बाद ये जिस तरह जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है फूड को, ये कितना बड़ा फसाद है। अब कहते हैं नहीं जी आप ऑर्गेनिक की तरफ आए, तो भाई पहले आपने ये बनाया क्यों था, इन चीजों को इतना खराब क्यों कर दिया। अब कहते हैं वो उनके अंदर बड़ी खराबी, वो इंसान ने खुद ही खराबी करी है ना, अल्लाह ने तो नहीं ऐसे पैदा की थी ये चीजें। आप देख ले जितने फसाद है ना जमीन पे, इंसान के अपने किए हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज को प्योर किया था, प्योर पैदा किया था। फिर खेतियों को हलाक करना, आप देखिए खेतियों को हलाक करने में सब है। आज जो गंदम है वो कोई खुद नहीं उगा सकता, उनसे जो बीज लेंगे तो उगेगी, ऐसा उसको मॉडिफाई कर दिया। जानवरों तक का नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। अब हम सोचे होंगे कि ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी इंसानों ने दुनिया में फसाद कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज लगा के, या और पोल्यूशन फैला के, या जितनी जिन वजूहात की वजह से ये सारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। नहीं, यही तो फसाद है, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ। और जब उसे कहा जाता है ना अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर, अखज़तहु الْعِزَّةُ, तो उसको इज्जत पकड़ लेती है। यानी जब ऐसे इंसान को अल्लाह का खौफ दिलाया जाए ना, बजाय इसके कि वो डर जाए, वो उसको ये होता है कि मुझे कहा, इज्जत उसकी जो है ना अना अना उसकी हाया ला जाती है। आप देखें अक्सर ऐसा होता है, जब हम में से भी किसी को कहे कोई कि अल्लाह से डरो, तो क्या वो करते हैं, कहते इतना बुरा मानते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं, अच्छा मुझे कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह से डरने का, कहने का मतलब ये कि मैं गलती कर रही हूं, तुम अल्लाह से डरो ना। तो ये बात नहीं होती। असल हमें जब कोई कहे ना इत्तकिल्लाह, तो हमें ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है और ये मुझे गलत समझ रहा है या किसको, हमें क्या समझना है कि इसने अल्लाह का नाम, इतनी बड़ी जात का नाम ले लिया, तो मैं वाकई अल्लाह से डरूं। क्योंकि देखें तकवा वो चीज है कि हम में से कोई ये नहीं कह सकता, नहीं कि मैं तो अब इतनी मुत्तकी हो गई हूं कि अब मुझे और तकवा की जरूरत ही नहीं। कोई भी हम में से नहीं कह सकता। अल्लाह तआला ने अपने नबी को भी कुरान में फरमाया कि है नबी अब अल्लाह इत्तकिल्लाह, अपने नबी को, हम में से को एक तकवा के लेवल्स हैं, और उन लेवल्स में हम कहाँ पे खड़े हैं हमें तो ये भी नहीं पता। अब यहां पे जब कहा गया ना इत्तकिल्लाह, तो हम ये सोचें, हमें जब इत्तकिल्लाह कहा जाता है तो हमारा रवैया आगे क्या होता है, इस बंदे का क्या रवैया जो मुनाफिक है। मुनाफिक उसको उसकी अना आड़े आ जाती है, उसकी अना उसको अल्लाह से डरने का वो नहीं सबक देती, उसकी अना कहती है कि वो इसने मुझे कहा, ये अपने आप को क्या समझता है। इज्जत तो बिल इसमें फहसबुहु जहन्नम, तो ऐसा इंसान जिसके अंदर इतना तकब्बुर है ना कि उसकी अना आड़े आ जाए, उसका तो फिर ठिकाना सिर्फ जहन्नुम ही है। वो तो फिर जहन्नुम ही उसको सीधा करेगी, क्योंकि दुनिया में तो उसने अल्लाह से डर के चलना ही नहीं। इसलिए हमें जब पता चलता है, देखें सूरह अनफाल में, इन्नमल मुमिनून अल्लजीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वंचिदत कुलूबहुम। मोमिन की क्या निशानी पता चलती है कि मोमिन वो होता है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है ना, उसका दिल कांप जाता है, वो डर जाता है। ऐसे नहीं कि चलो चलो जाओ तुम खुदा, जैसे कोई इत्तकिल्ला तो अरबी में हमें कोई नहीं कहेगा, कोई कहे खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डर जाओ। अगर ऐसे कोई कहे तो बेपरवाह ना हो। हजरत उमर से किसी ने कह दिया था कि ए उमर अल्लाह से डर, तो अपना चेहरा जमीन में रख दिया और अपना चेहरा मट्टी में रोलने लगे और फरमाने लगे हाँ उमर को अल्लाह से डरना ही चाहिए, मामूली बात नहीं। और हमें कोई कहे तो हमें क्या लगता है, बस लगता किसी ने करंट डाल दिया। हाँ मुझे ऐसे कह दिया, तुम डरो ना अल्लाह से, मुझे क्यों ऐसे लेक्चर दे रहे हो। तो ये जहां अल्लाह का नाम आ जाए, मोमिन का काम है वो पिघल जाए, उसका दिल कांप जाए, कितनी बड़ी जात का नाम ले लिया, मुझे वाकई अल्लाह से डरना चाहिए। और वो कोई भी कह रहा हो, वो चाहे आपको गलत तरीके से ही कह रहा है, वो चाहे वाकई आपको ही गलत समझ के कह रहा है, ये ना सोचे नहीं इसने मुझे गलत समझा था ना, खुद क्या चीज है ये, इसको खुद नहीं डरना चाहिए अल्लाह, ये तो खुद मेरे से भी ज्यादा ऐसे काम करती है, ये करती है। तो उसको छोड़े, वो कोई भी है, वो कितनी भी गलत है, जब उसने उसने तो आपको अल्लाह का तकवा करने को कहा ना, उसने तो आपको कहा ना अल्लाह से डरे, फौरन आजी दिखानी चाहिए और कहना चाहिए हाँ वाकई मुझे अल्लाह से डरना चाहिए, और वाकई अल्लाह से डर जाना चाहिए उसको, अल्लाह का तकवा वाकई आपकी जुबान को उस वक्त रोक दे, अल्लाह का तकवा वाकई उस वक्त सिर्फ ये क्या क्या, अगर दोबारा वही चीज नहीं शुरू कर देने की हाँ मुझे अल्लाह से डरना चाहिए और फिर उसी जगह पे नहीं, अल्लाह का डरने का मतलब ये है कि वाकई फिर मैं उस वक्त रुक जाऊं जो गलत काम कर रही, मैं उस वक्त रोक दूं अपनी जुबान को, मैं अगर झगड़ा करती हूँ तो उस झगड़े से निकल खड़ी हूँ, इन्हें मुझे ये नहीं करना, कोई गलत काम ऐसा कर रही है तो तब भी अपने आप को उस वक्त देखना चाहिए, इसने मुझे अल्लाह का डर दिलाया, इतनी बड़ी जात की बात की है, छोटी बात नहीं है। तो इस ये तो यानी इसके अंदर प्राइड अपनी वो इतनी होती है, वो तो एक्सप्लोड हो जाता है, तुम मुझे कौन होते हो कहने वाले, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तो उसको ना इज्जत आके पकड़ लेती है साथ गुनाह के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सब गुनाहों में सबसे बड़े गुनाहों में दाखिल है कि इंसान से कहा जाए अल्लाह से डर, तो वो उल्टा नसीहत करने वाले को डांट दे कि तुम अपनी अपना ख्याल करो, तो मुझे क्या नसीहत कर रहे हो, या इस तरह की वो बात कहे, वो उल्टा नसीहत करने वाले को पड़ जाए। ठीक है, तो आज देख लें ये आयत जब हम पढ़ लें तो उसके बाद इसका असर हमारे ऊपर होना चाहिए, भी असल में हाद फिर यकीनन उसका ठिकाना बहुत बुरा है। और मैंने आपको बताया महद जो होता है गोद को भी कहते हैं, क्योंकि जहन्नुम जो है ना वो गोद बन जाएगी उसकी, जैसे माँ की गोद बच्चे को हग कर लेती है ना, अब समेट लेती है अपने अंदर जब बच्चे को उसने उठाया होता है, तो जहन्नुम भी इस तरह जहन्नमी को लपेट लेगी अपने अंदर। वह मीन अन्नासी और लोगों में से, अब ये जबरदस्त बात है एक ऐसे इंसान की जो क्या करता है, मैं यशरी नफ्सहु बितिगा मरदातिल्लाह, ब्यूटीफुल अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ये बात है ना, जो क्या करता है बेच देता है अपने आप को, किस लिए, मेरे बेचने में जब आप कोई चीज बेचते हैं तो किसी के इब्ज बेचते हैं ना, कोई उसके बदले में कुछ लेना होता है, इसने अपने किस चीज को बेचा आते, अच्छा ऐसे समझे इसको, आप दुनिया में कितनी चीजें बेचती हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना वक्त बेचती हैं तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, अपनी सलाहियत बेचती हैं तो उसके बदले में आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। अब ये बच्चे जो हैं ये अपनी मेहनत मेहनत वक्त मेहनत ये बेच रहे हैं तो इनको डिग्री मिलती है। तो कोई ना कोई चीज आप देते हैं किसी चीज के इवज, सही है, इन्होंने अपने आप को बेच दिया किस चीज के इवज, क्या लेने के लिए, इब्तिगा मर्दातिल्लाह, इस चाह में इस ख्वाहिश में इस तलाश में कि मर्दातिल्लाह रजा अल्लाह की मिल जाए, उस दिल की ख्वाहिश क्या है, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, इसके लिए वो अपने आप को बेच देता है। अपने आप को बेचना क्या है, ये नहीं कि वो खुदकुशी कर लेता है, ये नहीं कि वो कोई जंगल में जाके बैठ जाता है, ये नहीं वो अपना काम कारोबार छोड़ देता है, नहीं। यानी उसकी जिंदगी जो है ना वो कैसी है, उसका सोना जागना उठना बैठना खाना पीना, वो सब वक्त क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या है और उसकी कोशिश क्या है और उसकी मेहनत क्या है और उसकी जिंदगी गुजर किस में रही है, यानी कैसे अल्लाह को राजी कर लूं, कैसे उसके दिमाग पे एक ही बात छाई थी, एक ही चीज सवार है। जैसे आप देखें ना बच्चे, अब उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में क्या है कि मैंने ये डिग्री लेनी है, इसके लिए मेहनत कर रहा है, ना रात देखता है ना दिन देखता है, जिसको वाकई जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे ही है ना, उनको परवाह है कोई शादी ब्याह है, ना उनको परवाह है कि किसी का जनाजा है, वो बस अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं दिन और रात, और बस उसके अंदर उन्होंने अपने आप को खपाया पड़ा है। ये नहीं कि आप यहाँ पे भी ऐसे करें, कहने का मकसद ये कि जब आप एक चीज को आपने खरीदना है ना, अचीव करना है, तो फिर इतनी आप मेहनत करते हैं, इन्होंने तो बेच दिया अपने आप को, सौदा कर लिया अल्लाह के साथ। सौदे में दिया किसको है, अपनी जान को ही दे दिया अपनी जान। एक तो शहादत है, वो तो आप अपनी जान देते ही हैं जो, लेकिन वो तो मैदान जंग की बात है, लेकिन हमेशा ये शहादत नहीं है, मतलब है कि अपना आप ही बस लुटा के रख दिया, अपनी जिंदगी को लुटा दिया, अपना सारा यानी अपनी सारी मेहनत, माल है, अपना वक्त है, अपनी कोई चीज है, अपनी सब चीजें बस अल्लाह की, बस अल्लाह खुश हो जाए। अब मेरी बात, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्या कैसा इंसान होगा वो, क्योंकि जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं ना वो कैसा इंसान होगा, तब तक वो वैसी मेहनत हम कर ही नहीं सकते, वो कैसा होता होगा, वो जिंदगी कैसी होती होगी जिसकी बस तलाश ही क्या है। और देखिए यहाँ पे आ गया इब्तिगा, तलाश करना, मर्दात मस्दर आया, रजा अल्लाह की नहीं, मर्दात, मर्दात से मतलब है कि वो वाकई बस उसका, उसकी रियली वो बस कहता है कि बस अल्लाह खुश हो जाए उसको, और कुछ नहीं चाहिए, उसकी सारी कोशिश ही इसमें है। वो ये सौदा कितना प्यारा सौदा करता है, और अल्लाह ताला ने ना बहुत जगह पे कुराने पाक में अल्लाह और बंदे के दरमियान ये जो मामला है ना उसको सौदा कहा है, क्योंकि इंसान कुछ गिव करता है और फिर इन रिटर्न कुछ पाता है, ठीक है। लेकिन ये रिटर्न ऐसा है ना कि हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ उसकी उसका, जैसे आप यहाँ पे अगर कोई अपना मतलब अपनी गाड़ी बेचते हैं, आपको फौरन पैसे मिल गए, आपको नजर आ गया, हो सकता है इसमें तो आपको कुछ नजर ही नहीं आता कि अल्लाह की रजा मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो इंसान फिर कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, इससे क्या हासिल है, आप कोई नेक ऐसा काम कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, अब कैसे पता चलेगा अल्लाह राजी है कि नहीं। देखिए गारंटीड तो वही पता चल सकता है अल्लाह के पास जाके कि अल्लाह ताला की रजा अपने पाली के नहीं पाई, अल्लाह की खुशी पाली के नहीं पाई, ये सिर्फ वहां अल्लाह के पास जाके पता चलेगा। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं, तो इसका एक एक तरीका, मगर वो गारंटी नहीं है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है अल्लाह राजी है मेरे से, इस बात की वजह से कि जब आप ये चेक करें कि आपका पूरा दिन किन कामों में गुजरता है, अगर तो अल्लाह ने आपको नेकी तौफीक दे दी है ना, तो समझ लें कि अल्लाह ताला राजी है। ये एक उलमा की बात है, ये कोई गारंटीड बात नहीं मैं बता रही, ठीक है। और अगर और चीजों में गुजर रहा है जो आखरत का अकाउंट नहीं भर रही, बस ऐसे ही फजूल है, तो बस फिर इतना नहीं है फिर, क्योंकि अल्लाह ताला तौफीक उसी को देता है जिससे राजी हो। ये उनकी अपनी कहने की एक बात है जो मैंने आपके सामने रखी, मगर गारंटीड कुछ नहीं, गारंटी यही है कि जब मर के अल्लाह के पास जाएंगे तो पता चलेगा, बल्कि मर के जो ही आंखें बंद होंगी तो फरिश्तों ने आ जाना पैगाम लेके कि अल्लाह राजी है कि नहीं राजी, चल है नेक रूह, चल है पाकीज़ा रूह, अल्लाह तुझसे राजी है, चल अल्लाह की तरफ, उसी वक्त पता चल जाएगा कि अल्लाह राजी है कि नहीं। तो कयामत तो जब आनी है, मौत के वक्त ही पता चल जाना, लेकिन अल्लाह की रजा किन के लिए, अल्लाह ताला कहते हैं जिसने अपना आप बेच दिया। देखना है आपने कि किस तरह सहाबा ने अपना आप बेचा, हजरत सुहेब जो थे उनके बारे में आता है कि वो जब हिजरत करने लगे थे तो काफरों ने उनका रास्ता रोक लिया कि हमने नहीं जाने देना तुम्हें, अच्छा भी खुद भी तो नहीं मानना होता था लेकिन दूसरों को भी नहीं, सुहेब रोमी जो थे, तो उन्होंने अपनी सवारी से उतरे, उन्होंने कहा कि मेरे, तुम्हें पता है कि मैं कितना जबरदस्त तीर अंदाज हूं, मेरा निशाना कभी खता नहीं जाता, तो मेरे पास जितने तीर है ना वो मैं चलाऊंगा, और जब तक ये सारे खत्म नहीं हो जाते तो मैं तुम्हें छेद दूंगा, इसके बाद तलवार निकालूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा जब तक मेरी तलवार नहीं टुकड़े टुकड़े जाती, फिर तुम मुझे पकड़ लेना, फिर तुम जो चाहो फिर मेरे साथ करोगे, लेकिन उससे पहले यानी मैं तुम्हारा भी फिर हाल बुरा करके ही जाऊंगा, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक है, वरना ये है कि मेरा सारा माल मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है, तुम जाके मेरा माल ले लो लेकिन मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो इस पे राजी हो गए, तो उन्होंने अपने माल का बता दिया। इस तरह से उन्होंने हिजरत की कि उनके पास कुछ भी नहीं था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह ने वही के जरिए ये आयत नाजिल कर दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख के मुबारकबाद दी थी कि ये वो है जिसने वाकई सौदा कर लिया अल्लाह के साथ। अल्लाह ताला फरमाता है ना, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों की जानों को और माल खरीद लिए जन्नत के बदले, यानी जन्नत इसका रिवॉर्ड है, इसका रिटर्न है, जान और इनके माल, वो अपनी जानें भी लुटाते हैं माल भी लुटाते हैं, तो इसने तो अपना आप लुटा दिया। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाह हमें इनमें शामिल करे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उनको देखे कैसे उन्होंने अपने आप को बेच दिया था अल्लाह के लिए, कि जिस वक्त सबसे पहले ना उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना शुरू किया था, यानी सहाबा में पहले खतीब वो थे ये समझ ले। तो मुशरिकीन आए, जब वो काबा में आके उन्होंने लोगों को बुलाया तो मुशरिकीन ने मक्का उन पर टूट पड़े, इतना मारा, इतना रोंदा पैरों तले, उतबा बिन रबिया ने तो इतना उनके चेहरे पे मारा था, इतने थप्पड़ मारे थे कि पता नहीं चलता था नाक कहाँ है और मुंह कहाँ है। तो उनके कबीले के लोगों को जब पता चला वो दौड़े भी आए और उनको छुड़ाया और उनके घर लेकर आए उनको, तो उस वक्त बेहोश पड़े हुए थे, लोगों का लगता था कि ये नहीं अब ये बचेंगे नहीं, सारा दिन बेहोश रहे। जब शाम हुई होश आया तो उनके वालिद थे अबू कहाफा और कबीले के लोग वो पास खड़े हुए थे, होश आते ही पहली बात क्या पूछी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, वो किस हाल में है। उनके कबीले के लोग इतने गुस्से हुए, इतनी मलामत की कि तुम्हें ये सारी जिल्लत उनकी वजह से तो उठानी पड़ी है, ये तुम्हें मार पीट इतनी बर्दाश्त करनी पड़ी, तुम होश में आते फिर उन्हीं का नाम ले रहे हो। तो वो मायूस हो गए, अपने घरों को चले गए और उनकी माँ को कह गए कि जब तक इनके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तुम इसका बायकॉट कर दो, इसको खाने पीने को कुछ ना देना। लेकिन माँ थी तो खाना ला के सामने रख दिया, तो फरमाने लगे, दिन भर के भूखे थे बेहोश पड़े हुए थे, तो फरमाने लगे मैं कसम खाता हूँ खुदा की कि मैं नहीं कुछ चखूंगा खाने और ना पानी का घूंट पीऊंगा जब तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख लूं। तो हज़रत उमर की बहन थी, उन्होंने आके बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से, ये उनको तो नहीं कुछ कहा। तो फिर जख्मों से चूर थे, चलने के काबिल नहीं थे, मगर अपनी माँ के सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, नबी अलैहि सलातो वसलाम इन पे झुक पड़े, इनको चूमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सख्त गिरिया तारी हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इन्होंने देखो इस्लाम की खातिर अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान को कैसे खपा दिया। अल्लाहु अकबर, इस तरह वो लोग थे। जंगे उहद में साद बिन रबी को लोगों ने देखा कि जख्मों से चूर है, दम तोड़ रहे हैं, बस आखिरी उनकी सांसें हैं, पूछा कोई वसीयत करनी है तो कर दे, कहा अल्लाह के रसूल को मेरा सलाम पहुंचा देना और मेरी कौम से कह देना कि अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें निछावर कर दे। आखिर वक्त तक उनको यह था कि अल्लाह के रास्ते से पीछे ना हटना। अल्लाह अकबर, ये वो लोग थे इन्होंने बेच दिया ना अपना, उनको बस उनकी कोई धुन और थी नहीं, उनकी कोई और यानी और भी कोई चीज उनको मतलूब थी, सिर्फ क्या मतलूब था, अल्लाह राजी हो जाए। इस तरह मसूद बिन कर्रास बयान करते हैं कि एक दफा मैं सफा मरवा की सही कर रहा था तो मेरी नजर एक नौजवान पे पड़ी, लोग उसको बेतहाशा मार रहे थे, उसके हाथों को बांधा हुआ था, औरतें मर्द उसके पीछे लगे हुए थे, उसको धक्के दे रहे थे, उनमें एक बूढ़ी औरत भी थी जो चीखती चिल्लाती भी उसको गालियां दे रही थी। तो मैंने पूछा, ये नौजवान कौन है और ये बुढ़िया कौन है? लोगों ने कहा, उबैदुल्ला का बेटा तलहा है, इसने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ के नया दीन इख्तियार कर लिया और ये बुढ़िया उसकी माँ है। सोचे इंसान अपने लोगों से कितनी भी बातें सुन ले, लेकिन अगर उसको कोई अपना, कोई अपनी माँ, कोई वो बुरा भला कहे ना, तो कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि लोग उसको तरह तरह की तकलीफें दे रहे हैं ताकि वो वापिस अपने दीन, आबाए दीन की तरफ लौट आए, लेकिन उस पे कोई किसी सख्ती का कोई असर नहीं। और इसके बाद ऐसा हुआ कि कुरैश का एक बड़ा कड़ियल जवान था नौफल, वो आगे बढ़ा, उसने रस्सियों से तलहा के सारे जिस्म को जकड़ दिया और बेतहाशा और मारने लगा, लेकिन सब बेसुध, इसलिए कि जो अल्लाह की मोहब्बत उनके अंदर थी ना, वो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। जो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, वो ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मुंह मोड़ लिया, किसी ने आपको जरा सा छोड़ दिया तो हाँ हमारे ऊपर तो बड़ी मुश्किल आ गई, ये फलाना हमसे बात नहीं करता, हम जब जब से इस तरफ आए हैं ना, वो हमसे फलानी बात कर रहा, वो हमसे नाराज हो गया, वो हमसे अनॉयड हो गया, वो हमारे साथ नहीं ताल्लुक रख रहा, बस जरा जरा सी बातों के ऊपर डिसहार्ट होके चल। ये मोमिन का काम नहीं होता, जिन्होंने अपनी जानें बेच दी होती ना, कभी सौदा हमने ऐसा करने का सोचा भी कि अपनी जान बेच दूं अल्लाह के लिए, मेरा दिन गुजरे, मेरी जिंदगी गुजरे, कि बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, ये एक चीज की धुन लग जाए मुझे, कभी ऐसा हुआ? या हम लोगों के मुंह देखते रहते हैं, किसका मुंह बना हुआ है मेरा हिजाब देख के, किसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नमाजें पढ़ रही हूँ, किसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये कोई काम अल्लाह की फरमाबरदारी का कर रही हूँ, या मैंने कोई गुनाह छोड़ दिया तो उसके ऊपर लोग मुझसे खुश नहीं है, या हम यही देखते रहते हैं, क्या बेचा फिर अपने आप को? फिर तो हमने अपने आप को लोगों के लिए बेच दिया, अल्लाह के लिए नहीं बेचा हुआ। एक कुछ लोग हैं वो अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को बेचते, कुछ लोग हैं जो लोगों की रजा के लिए खुद को बेच देते, हमने किसके लिए बेचा हुआ? और ये आसान नहीं होता अल्लाह के लिए खुद को बेचना, ये कहना बहुत आसान है, फी सबीलिल्लाह, फॉर अल्लाह सेक आई एम डूइंग दिस, अल्लाह की खातिर मैं ये कर रही हूं, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कभी अंदर टटोल के देखें कि वाकई अल्लाह की खातिर भी है या सिर्फ बातें हैं। जिसको देख लो ना आज, वो बस यही अल्लाह की खातिर है जी, अल्लाह की खातिर है, बाद में बीच में देखो तो कुछ भी अल्लाह की खातिर नहीं होता, अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम। वाकई अल्लाह की खातिर ऐसा ही होता है, जिस तरह की हमारी नीयतें होती हैं, जैसी हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जब अल्लाह की खातिर होता है ना, तो सिर्फ मतलूब फिर अल्लाह की रजा होती है और कुछ नहीं होता, कोई चीज मतलूब नहीं होती। और हमने कहना सिर्फ वर्ड में क्या कहना, अल्लाह की खातिर, और मतलूब बाकी सारी दुनिया है, सिर्फ अल्लाह की रजा ही मतलूब नहीं। तो वल्लाहु रऊफ बिल इबाद, जो फिर ऐसा करता है ना, अपने आप को बेच देता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह भी बड़ा रऊफ है, शफकत करने वाला है। राहफत होती है वो मोहब्बत जो बाप को अपनी औलाद से हो, राहफत वो मोहब्बत होती है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है, कि जैसे हम कहते हैं ना, किसी को समझ नहीं आती मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे अंदर क्या गुजर रही है, मैं किस चीज से मैं लड़ रही हूँ, वो नहीं किसी को समझ आती, और वाकई कई दफा अल्फाज किसी को समझा भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला रऊफ बिल इबाद है, यानी शफकत करने वाला है बंदों पे, बहुत राफत वाला है, अल्लाह अंडरस्टैंड करता है कि जब कोई इंसान अपने आप को बेच रहा है तो वो कितने कुछ से गो थ्रू करता है, उसको कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, कितने लोगों की नजरों को झेलना पड़ता है, अल्लाह रऊफ है, वो अंडरस्टैंड करता है, कोई अंडरस्टैंड करे ना करे।